इशिका पार्टी से बोर हो गई थी, इसलिए वो वहां से जाना चाहती थी। इस बीच अभिमन्यु का उसके पास मैसेज आया। अभिमन्यु अपनी मीटिंग के लिए बाहर आया हुआ था और फ्री होकर वो इशिका को लेने के लिए आ रहा था। अभिमन्यु वहां पहुंचा तब उसने रोहन और इशिका की बातें सुन ली थीं, जहां रोहन को ये लग रहा था कि इशिका और दिशांक रिलेशनशिप में हैं। अभिमन्यु ने जब उनकी बातें सुनी तो वो तुरंत उनके पास आया और रोहन को इशिका की शादीशुदा होने की बात बताई। ऐसे लग रहा था जैसे अभिमन्यु को इस बात से जलन हो रही थी कि इशिका का नाम किसी और के साथ जोड़ा जा रहा था। इशिका के शादीशुदा होने की बात सुनकर रोहन भी चौंक गया था। उसने तुरंत इशिका से पूछा, तुम मैरिड हो, तुमने इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? क्या दिशांक इस बारे में जानते हैं? रोहन नहीं चाहता था कि किसी भी तरीके से दिशांक का दिल टूटे। अगर दिशांक को इशिका की शादीशुदा होने की बात पता नहीं होती तो वो उसे प्रपोज जरूर करता और फिर इशिका की ना सुनने पर उसे बुरा लगता। इशिका ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ वो जानते हैं कि मेरी शादी हो चुकी है। रोहन ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर भी उसके दिल में काफी सारे सवाल उठ रहे थे। उसने तुरंत इशिका से पूछा, तुम उम्र में अभी बहुत छोटी हो, तुमने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली? तुम अपने पति के लिए बहुत लॉयल लग रही हो, कौन है तुम्हारा पति? जिज्ञासावश रोहन ने इशिका से काफी सारे सवाल पूछ डाले। इशिका ने जवाब देने से पहले अभिमन्यु की तरफ देखा। अभिमन्यु ने रोहन को घूरते हुए कहा, तुम आज कुछ ज्यादा ही बातें नहीं कर रहे? रोहन तुरंत चुप हो गया था। वो धीरे से बड़बड़ाकर बोला, और खुद इतना अजीब बिहेव कर रहा है, वो इसे दिखाई नहीं दे रहा। अभिमन्यु ने रोहन की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वो इशिका की तरफ मुड़ा और बोला, मैं घर जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चल रही हो ना? इशिका ने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। उसने कहा, हाँ जरूर, आप गाड़ी के पास चलिए, मैं वहीं पर आ रही हूँ। इशिका और अभिमन्यु एंट्रेंस की तरफ जाने लगे, तभी रोहन उनके पीछे आते हुए बोला, मेरे लिए रुको, मैं वो तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। वो तीनों साथ में बाहर की तरफ जाने लगे। वहीं पार्टी के अंदर नक्श का चेहरा उतरा हुआ था। आयशा भी परेशान थी, उनकी परेशानी का कारण इशिका थी। उन्हें इस बात का अफसोस हो रहा था कि दिशांक इशिका से अच्छे से बात कर रहा था और वो उसे जानता भी था। नक्श से अब रहा नहीं गया, वो बिना सोचे समझे दिशांक के पास गया और बोला, मिस्टर राठौर, क्या इशिका भी डॉक्टर मर्चेंट को जानती है? दिशांक को इशिका से जुड़े हुए किसी भी सवाल पर जवाब देने से पहले सोचना पड़ता था। उनके आसपास और भी लोग खड़े थे जिनका ध्यान उनकी बातों की तरफ था। अगर वो हाँ कहता तो वो लोग इशिका के पीछे पड़ जाते और डॉक्टर मर्चेंट से मिलवाने के लिए फोर्स करते। दिशांक ने कुछ पल रुककर कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, वो एक कॉलेज ग्रेजुएट है, वो डॉक्टर मर्चेंट को नहीं जानती है। दिशांक की मना करते ही नक्श ने राहत की सांस ली। आयशा भी अब परेशान नहीं लग रही थी। दिशांक उनसे और बात नहीं करना चाहता था, तभी उसकी नज़र इशिका पर पड़ी जो एंट्रेंस से बाहर की तरफ जा रही थी। उसने तुरंत कहा, बाद में बात करते हैं मिस्टर राठौर, फिलहाल मुझे कुछ काम है तो पार्टी से निकलना होगा। नक्श ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया। दिशांक बिना इधर उधर देखे सीधे इशिका के पीछे जा रहा था। बाकी लोगों ने उसे इशिका के पीछे जाते देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ दी, तो वहीं उन्हें देखकर नक्श के चेहरे के भाव सर्द होने लगे। पार्टी के एंट्रेंस पर आते ही दिशांक इशिका से जा टकराया। वो तुरंत बोला, मैं कल US जा रहा हूँ, कंपनी के लिए कुछ पेटेंट रजिस्टर करना है और साथ ही नए प्रोजेक्ट पर भी काम करना है, बस मुझे तुम्हें इस बारे में बताना था। ठीक है, सब अच्छे से करके आना, इशिका ने जवाब दिया तो दिशांक वहां से चला गया। रोहन ने उनकी बातचीत सुनी तो वो उसे अजीब नजरों से घूर रहा था। वो इशिका से बोला, मिस्टर दिशांक राठौर आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, ऐसा तो होता रहता है, लेकिन वो इस बारे में तुम्हें इन्फॉर्म क्यों कर रहे थे? कुछ चल रहा है तुम दोनों के बीच में? रोहन की बातों से साफ था कि वो इशिका का इतना आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाला है। इशिका ने आह भरी और धीरे से कहा, अच्छा ठीक है, बता देती हूँ, वो मुझे इसलिए बता रहा था क्योंकि डॉक्टर मर्चेंट मैं ही हूँ। हालांकि इशिका ऑफिशियली सबके सामने आकर अपनी डॉक्टर मर्चेंट होने की सच्चाई बताना चाहती थी, पर रोहन का उस पर शक होने लगा था। वो उसे अजीबोगरीब सवाल पूछ रहा था, इससे इशिका थोड़ी इरिटेट हो गई थी, इसलिए उसने रोहन को बता दिया था कि वही डॉक्टर मर्चेंट है। वहीं इशिका की बात सुनकर रोहन चौंक गया। वो हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था, फिर वो अचानक हंसते हुए बोला, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है मिस सिंघानिया। इशिका रोहन की तरफ घूर कर देखने लगी, वो उस पर यकीन नहीं कर रहा था। रोहन आगे बोला, तुम्हें क्या मैं बेवकूफ नजर आता हूँ? ठीक है, मैं डॉक्टर मर्चेंट से नहीं मिला हूँ और वो बहुत कम लोगों के सामने आए हैं, पर जिस हिसाब से उनकी कैपेबिलिटी है वो आराम से 40-50 साल के होंगे। तुम अभी बहुत छोटी हो मिस सिंघानिया, लेकिन मुझे तुम्हारा मजाक अच्छा लगा। इशिका ने गहरी सांस ली और फिर से कहा, नहीं, डॉक्टर मर्चेंट मैं ही हूँ और मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। अब समझ आया तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम ऐसा अपने और दिशांक राठौर के रिश्ते को छुपाने के लिए कह रही हो ना? रोहन उसे घूरते हुए बोला, तुम्हारी इमेजिनेशन का कोई जवाब नहीं है, इशिका ने चिढ़ते हुए कहा। रोहन ने उसे देखकर मुंह बनाकर कहा, आई होप कि ये मेरी इमेजिनेशन ही हो, क्योंकि मुझे धोखेबाज लोगों से बहुत चिढ़ है। अगर तुम्हारे और दिशांक राठौर के बीच कुछ चल भी रहा है तो पहले अपने पति से डिवोर्स लो और फिर उससे शादी कर लेना। शादी में धोखा देना अच्छी बात नहीं होती है। दिशांक राठौर एक अच्छा आदमी है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम उसे भूल जाओ, शायद तुम्हारा पति अच्छा नहीं होगा, तो पति से डिवोर्स लो और दिशांक से शादी कर लो। रोहन इशिका को समझा रहा था, तभी वो बोलते हुए चुप हो गया। अभिमन्यु उसे ऐसे घूर रहा था मानो अभी इसी पल उसका मर्डर कर देगा।
उसके चेहरे के बिगड़े हुए भाव देखकर रोहन ने कहा, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? आज मीटिंग में तुम्हारी डील नहीं हुई क्या? अभिमन्यु ने अपने गुस्से को काबू किया और जवाब में कहा, आजकल तुम बहुत बातें करने लगे हो, खासकर लोगों को फ्रीकी एडवाइस भी दे रहे हो कि किसे किससे तलाक लेकर शादी कर लेनी चाहिए। जैसे ही अभिमन्यु की बात खत्म हुई, इशिका की हल्की सी हंसी छूट गई, जिसे हालांकि रोहन और अभिमन्यु दोनों ने ही नहीं देखा था। अभिमन्यु एक जेलस हस्बैंड की तरह रिएक्ट कर रहा था, वहीं रोहन अभिमन्यु से घबरा रहा था। वो लोग आपस में लगे हुए थे, तभी उन्हें एक गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। वो दिशांक था, जो अपनी ब्रांड न्यू येलो कलर की लग्जरी स्पोर्ट्स कार में था। मिस सिंघानिया, मैंने आज ही नई कार खरीदी है, आप कहो तो मैं आपको घर पर ड्रॉप कर देता हूँ, ये कमाल की है, दिशांक ने इशिका को आवाज लगाकर कहा। वो बस इशिका को अपनी ब्रांड न्यू कार दिखाना चाहता था। इशिका को ड्राइविंग करने का शौक था और वो इस तरह की कार चलाना पसंद करती थी। यही सोचते हुए दिशांक अपनी गाड़ी उनके पास ले आया था। इशिका उसे मना करती उससे पहले अभिमन्यु ने कहा, तुम्हें इसे लिफ्ट देने की कोई जरूरत नहीं है, इसका रास्ता तुम्हारे रास्ते से अलग है। कोई बात नहीं, फिर भी मैं यू टर्न लेकर ड्रॉप कर दूंगा, दिशांक ने मुस्कुराकर कहा। दिशांक को इशिका से इतना फ्रैंक होते देखकर अभिमन्यु का चेहरा सर्द हो गया। वहीं इशिका ने रोहन की तरफ देखा तो वो उसे अजीब नजरों से देख रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे वो इस बात को कंफर्म कर रहा हो कि दिशांक और इशिका के बीच कुछ चल रहा है। अभिमन्यु ने इशिका की तरफ देखा और बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, तुमने पार्टी में ड्रिंक की थी ना, ड्रिंक करने के बाद किसी अनजान आदमी से लिफ्ट नहीं लेनी चाहिए।
इशिका ने दिशांक की तरफ देखकर कहा, मैं मिस्टर राजवंश के साथ चली जाऊंगी, आप जा सकते हैं। ठीक है, दिशांक ने उतरे हुए चेहरे के साथ कहा और फिर अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहां से चला गया। उसे लगा कि वो इशिका को साथ लेकर जाएगा तो ड्राइव वही करेगी। दिशांक के जाते ही पृथ्वी गाड़ी लेकर आया, उसने उतरकर अभिमन्यु के लिए दरवाजा खोला। अभिमन्यु ने इशिका को अंदर बैठने का इशारा किया, उसके बैठते ही रोहन भी गाड़ी में बैठने को हुआ, तभी अभिमन्यु ने उसे बैठने से रोक दिया था। क्या तुम्हारे पास तुम्हारी खुद की कार नहीं है? अभिमन्यु ने भौहें चढ़ाकर पूछा। है, लेकिन मैंने भी शराब पी रखी है, मैं ड्राइव नहीं कर पाऊंगा, रोहन ने जवाब दिया। अभिमन्यु ने उसे देखकर सिर हिलाकर कहा, ठीक है, समझ गया, ऐसा करो कि तुम टैक्सी ले लो। इतना कहने के बाद अभिमन्यु गाड़ी में बैठ गया। रोहन धीरे से बोला, थोड़ी देर पहले इसने कहा था कि शराब पीने के बाद किसी अनजान आदमी के साथ गाड़ी में मत बैठो, उस बात का क्या हुआ? गाड़ी का दरवाजा बंद हो चुका था। रोहन को वहां पर छोड़कर अभिमन्यु की गाड़ी आगे निकल गई। रोहन ने अपने लिए कैब हायर की और फिर घर जाने के लिए निकल गया। हालांकि उसे आज अभिमन्यु का बिहेवियर काफी अजीब लग रहा था। गाड़ी के पिछले हिस्से में पार्टीशन लगा हुआ था। गाड़ी की डिम लाइट में अभिमन्यु इशिका का चेहरा देखने लगा। एक पल के लिए वो उसके खूबसूरत चेहरे में खो गया था। फिर वो कुछ पल रुककर बोला, मिस सिन्हानिया, क्या आप मेरी बैंडेज चेंज करने में हेल्प करेंगी? इशिका ने हैरानी से अभिमन्यु की तरफ देखकर पूछा। अभी गाड़ी में? हाँ, अभिमन्यु ने जवाब में कहा। वैसे तो हम हॉस्पिटल ही जा रहे हैं, लेकिन दादी ने देखा तो फिर वो नाराज हो जाएगी। पूरे दिन बिजी रहने के कारण मुझे बैंडेज चेंज करने का टाइम नहीं मिला। दादी का सोचकर अभिमन्यु ऐसा कह रहा था, ये जानने के बाद इशिका ने राहत की सांस ली। उसने अभिमन्यु की बैंडेज चेंज करने के लिए हाँ कह दी थी। इशिका ने गाड़ी की दूसरी लाइट ऑन की। इस बीच अभिमन्यु ने अपना जैकेट और शर्ट निकाल लिया था। उसने अपनी पीठ इशिका की तरफ कर ली। इशिका ने अभिमन्यु की चोट की तरफ देखा और पहले की हुई बैंडेज को हटाया। उसकी बॉडी काफी मस्क्यूलर थी। बचपन में भले ही वो दुबला पतला हो, लेकिन अब काफी फिट था। इशिका ने देखा कि उसके ब्लिस्टर्स ठीक होने लगे थे। इसका मतलब साफ था कि उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा था, तभी वो जल्दी रिकवर कर रहा था। इशिका कार की सीट पर घुटनों के बल बैठ गई और उसे दवाई लगाने लगी। अचानक गाड़ी किसी मोड़ पर मुड़ी और इसी के साथ इशिका का बैलेंस बिगड़ गया। वो नीचे गिरती उससे पहले अभिमन्यु ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया था। इशिका का सिर अभिमन्यु के कंधे पर था, तो अभिमन्यु के हाथ इशिका की कमर पर। डर के मारे इशिका ने अभिमन्यु को कसकर पकड़ रखा था और इस चक्कर में उसके होंठ अभिमन्यु के कंधे पर थे। इशिका के इस तरह छूने पर अभिमन्यु के दिल की धड़कनें बुरी तरह शोर कर रही थी। एक पल के लिए मानो वो पलके झपकना भूल गया था और बिना किसी भाव के सामने की तरफ देख रहा था। इशिका को एहसास हुआ कि उसके इस तरह गिरने पर अभिमन्यु को चोट लग सकती है। वो तुरंत अभिमन्यु से थोड़ा दूर हुई और बोली, मिस्टर राजवंश, आपको दर्द तो नहीं हो रहा है ना? आई एम रियली सॉरी, वो अचानक गाड़ी में यू टर्न लिया और मैं आपके ऊपर आ गई। नहीं, मैं ठीक हूँ, अभिमन्यु ने खुद को सामान्य करके कहा। इशिका वापस उसके पीछे चली गई और उसके दवाई लगाकर बैंडेज कर दी थी। अभिमन्यु ने वापस अपनी शर्ट पहन ली थी, लेकिन अभी भी वो अपने दिल की धड़कनों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जो इशिका के छूने भर से बेकाबू हो गई थी। अभिमन्यु के लिए इशिका का सामना करना मुश्किल हो रहा था। जैसे ही गाड़ी हॉस्पिटल पहुंची, वो बिना सोचे समझे गाड़ी से उतरा और सीधा ऊपर जाने के लिए निकल गया। अभिमन्यु का अजीब बर्ताव देखकर इशिका पृथ्वी से पूछे बिना रह नहीं सकी। उसने पृथ्वी से कहा, मिस्टर चौहान, क्या आज की मीटिंग अच्छी नहीं रही होगी? जो मिस्टर राजवंश इतना अजीब बिहेव कर रहे हैं, उनका मूड बिगड़ा हुआ लग रहा है। पृथ्वी ने उसे देखकर आइज रोल की और अपने मन में कहा, इस लड़की को कुछ पता नहीं चलता, आज की मीटिंग बहुत अच्छी थी और हमें इतनी बड़ी डील मिली है, सर का मूड क्यों बिगड़ा हुआ होगा? पृथ्वी ने इशिका की बात का कोई जवाब नहीं दिया और अभिमन्यु के पीछे जाने लगा। इशिका का बर्ताव भी बहुत अजीब लगा। इशिका उनके पीछे ऊपर जाने को हुई, तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, कहाँ जा रही हो मेरी प्यारी भांजी? इशिका ने पलट कर देखा तो वो आशीष था। आशीष ने वहां खड़ी अभिमन्यु की गाड़ी को देखा जो काफी महंगी नजर आ रही थी। फिर उसने इशिका की तरफ देखकर कहा, बहुत ख्याल रखते हैं वो तुम्हारा, क्या उसने तुम्हें कुछ पैसे दिए? इशिका आशीष की तरफ देखकर मुस्कुराई और फिर शरारत भरे लहजे में बोली, हाँ क्यों नहीं, ना सिर्फ उन्होंने बल्कि दादी ने भी मुझे काफी सारे पैसे दिए हैं। इशिका की बात सुनकर आशीष भी चुप हो गया। तभी इशिका ने कुछ पल रुककर कहा, अच्छा पिछली बार आप कुछ सच बताना चाहते थे, आप चाहो तो उसकी कीमत लगा सकते हो क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। उसकी बात सुनकर आशीष चौंक गया। उसने सिर हिलाकर कहा, एक बार फिर सोच लो, तुम मुझे पैसे दे पाओगी ना? बात 10-20 हजार की नहीं है जो तुम मुझसे डील करने की सोच रही हो। इशिका ने अपना फोन निकाला और तिरछी मुस्कुराहट दी। अचानक आशीष के फोन का नोटिफिकेशन टोन बजा। उसने देखा इशिका ने अभी अभी उसे 5 लाख रुपए भेजे थे। आयशा इतने पैसे उसे 2 या 3 महीने में भेजती थी जितने इशिका ने एक बार में भेज दिए। ये तो बस शुरुआत है, बाकी के पैसे आपके सच बताने के बाद भेजूंगी। चलो अब बताओ, इशिका ने गंभीर आवाज में कहा, इतने पैसे काफी थे आशीष का ईमान डगमगाने के लिए। क्या लगता है पैसे देखने के बाद आशीष इशिका को सच बता देगा कि वो किसकी बेटी है? ये तो अगले पार्ट में ही पता चलेगा। पढ़कर प्लीज आप समीक्षा किया करो। पहले तो काफी सारी समीक्षा आती थी और अब अपने बंद कर दिए। कहानी इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है क्या?